તારીખ 16/12/1995, પૂજ્ય બેનશ્રીના વચનામૃત, બોલ નંબર 215, 42 અને 214 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 361.
પરિણામ હશે ઉસ વિષય માર્ગદર્શન મનુષ્ય જીવ શુભ મેં લગતા હૈ પરંતુ અપની શુભગત વૃત્તિ બહાર ન જાય કલી ન જાય ભણને મને કલી ન જાય અપને સુખી શોધ ચલતી રહે ઇસ પ્રકાર લગતા હૈ
ગુજરાતી
બોલવામાં વય ન જાય વહી જાય મારવાડીમાં પણ વહી જાય શબ્દ છે વહી જાય વિજયો અને બહિર્જન અલગ અલગ છે પોતાના શુભ સ્વરૂપની શોધ ચાલુ રહે એવી રીતે જોડાય અપને સૌથી ઇસ પ્રકાર લગતા હૈ ઇસ પ્રકાર લગતા હૈ બરાબર શુભના જોડા
જોડના શબ્દ છે જોડના
મુક્ષુજી
શુભને
કે પરિણામ શુભ પ્રસંગો મેં જોડતા હૈ લગતા હૈ લગતા હૈ મને જુડતા હૈ ઉદાસી કરતા હૈ સ્વાધ્યાય કરતા હૈ દયાદાન યાત્રા આદિ કરતા હૈ જો ભી તો ઉસકા પરિણામ તો શુભ કાર્ય મેં લગતા હૈ જુડતા હૈ પરંતુ અપની શોધક વૃત્તિ રખ કરકે ક્યા શોધક વૃત્તિ ચાલુ રખ કરકે વો જોડતા હૈ કોઈ ભી શુભ પ્રસંગ મેં જોડતા હૈ લગતા હૈ તો અપની સ્વરૂપ કી ખોજ ચાલુ રખ કરકે જોડતા હૈ યે બાત મહત્વપૂર્ણ હૈ ઇસલિયે ઉનકો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કે દૌરાન માલુમ પડેગા કે મેરા આત્મા શુદ્ધ પરિપૂર્ણ જ્ઞાયક સ્વરૂપ હૈ તો ભી ઉસકી શોધક વૃત્તિ ચાલુ રહેગી ઓર કલ્પના કરને વાલે કી શોધક વૃત્તિ નહીં રહેગી નહીં હોગી ગુણ મેં સે ક્યા અંતર હૈ દેખા ફરક શરૂ મેં ફર્ક કા કામ હો ગયા કે જિસકી શોધક વૃત્તિ ચાલુ હૈ ઉનકો ઉસ પ્રકાર કા અભિપ્રાય હૈ કે મેરા સ્વરૂપ કી ખોજ કરના મુજે બાકી હૈ મુજે ઉસકા અનુભવ હોના બાકી હૈ મુજે પ્રાપ્તિ હોના બાકી હૈ બાત ખોજ મેં આતી હૈ જબ कोई सुन करके विकल्प में चढ़ जाता है कि मैं शुद्ध हूं शुद्ध हूं, उसको खुद प्रति कहेंगे वो तो क्या कहेगा कि गुरु ने बताया कि तेरा आत्मा शुद्ध है, मैंने भी मान्य कर लिया मेरे गुरु की बात, तो मैं भी कहता हूं कि मेरा आत्मा शुद्ध है। और गुरु कहता है कि तुम उसका ही निश्चय करो, तो मैंने निश्चय भी कर लिया। लेकिन कैसे निश्चय किया? शोध करके खोज करके निश्चय किया तो वैसे ही कर लिया, अपने अंतर को चली कि नहीं चली? नहीं चली और मान लिया, वो मानना सही नहीं है। तो बहुत मिठा हो
जाएगा। जैसे बाह्य उपयोग और फल लक्ष्य उपयोग का बात चल रहा था परसों, मतलब उस तरह से यहाँ पे भी बात आ रही
है। हाँ, इसमें वो कल प्रश्न उठा है, वो कल का जो प्रश्न है इसके अनुसंधान में वो देते हैं। आज सुबह वॉकिंग में भी थोड़ी चर्चा चली थी कि भावना और विकल्प में अंतर क्या है। मैं शुद्ध हूँ, मैं भिन्न हूँ, नाम स्वरूप ही हूँ इसलिए भिन्न हूँ, सर्वथा सर्व सबसे सर्वथा में सर्व से सर्वथा भिन्न ज्ञानमय हूँ, ऐसी जो भावना है वो तो किसके साथ विकल्प भी चलता है, प्रश्नों में चला था सुबह। तो विकल्प भी है और भावना भी है, तो विकल्प और भावना है उसमें क्या अंतर? मनुष्य कैसे खाते तो विकल्प चल रहा है, कल्पना में चढ़ गया या भावना में रहा है? तो ये वचनामृत इसके लिए बहुत बढ़िया है और अच्छा है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो बात एक नेचुरल कोर्स में आई है, क्योंकि दूसरे पैराग्राफ में वो लिखा है कि मैं शुद्ध हूँ मैं शुद्ध हूँ, ऐसा कोई करता है वो पर्याय की अशुद्धता को भूल जाता है तो स्वच्छंद हो जाता है, वो दूसरे पैराग्राफ में दिया है। तो स्वच्छंद किसको नहीं होगा? कल्पना में चढ़ करके स्वच्छंद किसको नहीं होगा, या विकल्प में कौन सा जीव नहीं चढ़ेगा नहीं चढ़ जाएगा? कि जिसको शुरू से ही खोजक वृत्ति है, भले ही वो शास्त्र स्वाध्याय में वो बात समझता है, पूजा भक्ति करता है, पंचकल्याण में उत्साह से भाग लेता है, दयादान करता है, शुद्ध में लगता है जुड़ता है, परंतु अपनी शोधक वृत्ति चली जाती है, वो रख करके चली नहीं जाती, इसका मतलब वो चालू रहती है, शोधक वृत्ति चालू रहती है और ये शुभोपयोग उसको होता रहता है।
मैं शुद्ध हूँ भिन्न हूँ ये सिद्धांत बोध में आता है।
हाँ,
उपदेश बोध परिणमित हुए बिना, यानी कि वैराग्य उप समय आए बिगर, ये भावना कैसे आई, कैसे आई?
उसमें क्या है कि ये बात सिद्धांत की बात समझना और स्वरूप की भावना दोनों अलग अलग बात है। भावना वैराग्य उप समय ले जाएगी। सिद्धांत में दिमाग लगाना एक बात है, क्योंकि बौद्धिक स्तर का विषय हो गया। सिद्धांत में दिमाग को लगाना और बौद्धिक लेवल का बात हो गया, और आत्मस्वरूप की भावना है वो फीलिंग लेवल स्टेज में एंट्री कराएगा, क्योंकि भावना तो वेदन से वेदन उत्पन्न करेगी, तो दोनों अलग अलग लाइन होगी। विषय एक है, लाइन दोनों अलग अलग है।
भावना तो ज्ञान में से होती है, अनुभव में से आती है।
भावना अनुभव में से भी आती है, थोड़ी चर्चा ऐसी चली थी, तो कोई मुमुक्षु है ऊपर के स्तर में नहीं आया है, भाव भाषण तक नहीं पहुंचा है,
उसको स्वरूप की भावना लाभ करती है या नहीं करती, या आती है या नहीं आती है, इस प्रकार की चर्चा चली थी। प्रश्न तो बात वो है कि किसी भी स्तर का मुमुक्षु हो, कभी कभी किसी मुमुक्षु को अव्यक्त रुचि होने से स्वरूप की बात सुनते ही उसको रस आता है, रुचि आता है, और वो भी भावना में आ जाता है स्वरूप की, और वो भी भाने लग जाता है। तो उसके लिए वो पाबंदी नहीं है कि वो तो अभी शुरुआत वाला है, वो आत्मभावना में उसको नहीं होनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसको आत्मभावना नहीं करनी चाहिए, ऐसी पाबंदी नहीं है।
वो क्रम का उल्लंघन नहीं है,
ऐसी वो भावना को
क्रम का उल्लंघन नहीं है,
और वो भावना को रोक नहीं सकेगा।
जो नेचर ऑफ कोर्स से आएगी अंदर से भावना, उसमें खुद ही नहीं रुकेगा, रोकेगा और रोक सकेगा भी नहीं,
और उस पर शंका भी नहीं रहेगी,
पर उसको उस बात की शंका नहीं होगी कि मैं किस स्तर में हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ये बात हो जाएगी। और उस स्वरूप की भावना में स्वरूप प्राप्ति की भावना है, क्या है, प्राप्त हो गया है, वो भावना नहीं है। क्या अंतर है, जो कल्पना में चढ़ता है, विकल्प में आ जाता है, उसको तो ऐसा लगता है कि मैं इस स्वरूप हूँ, अनुभव नहीं है, फिर भी वो मान लेता है कि मैं तो परमात्मा हूँ, जबकि उनको तो स्वरूप की भावना में स्वरूप प्राप्ति की भावना गर्भित है,
प्राप्ति का निषेध है,
प्राप्ति का खेद है, निषेध है, और ऐसा मैंने मुझे अनुभव हो, प्राप्त मैंने अनुभव हो, वो बात उसको भावना में है, इसलिए उसकी भूल नहीं होती है, और उसके लिए उसकी खोज चलती है,
और इसलिए वो क्रम विपर्यास की भी उत्पादक नहीं है, क्रम विपर्यास भी होने नहीं देती है,
क्रम विपर्यास
होने नहीं देती है,
नहीं वो भावना क्रम विपर्यास होने नहीं देगी, वो भावना क्रम विपर्यास होने देगी नहीं, ऐसी बात है। बात किया था तो कोई बुढ़ी औरत थी, तो वंशी के दर्शन करने को आई, लेकिन तो ज्यादा दिमाग हमारा है नहीं, अब तो याददाश्त भी कम हो गई है, आंखें भी काम करती नहीं, कान भी सुनने में काम नहीं करता, वृद्धावस्था आ गई है, उनको क्या करना चाहिए। तो वंशी ने क्या कहा कि अरे माँ जी, आप तो भावना वाले तो हुई शुरू से ही जानते थे, वहां रहते थे, आप तो भावना वाले ही, अपनी भावना और बढ़ाइए। तो भावना क्या है, स्वरूप प्राप्ति की भावना है उसको, कि मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो, और नायक तो सुनते ही थे, नायक स्वरूप को तो गुरुदेव रोज सुनाते थे, और हमारे यहाँ तो माहौल ही ऐसा ही है, लेकिन स्वरूप प्राप्ति की भावना उसको भी आत्मभावना कहते हैं, और स्वरूप का भाव, स्वरूप का रस आए सुनते ही, पढ़ते ही, वो भी स्वरूप की भावना है, वो भी आत्मभावना है, और आत्मभावना भावना रूप में होने से कभी नुकसानकारक नहीं है।
तो आत्मजागृत में स्पष्ट करना है कि भावना के कितने प्रकार है, भावना के कितने प्रकार है, सदगुरु के प्रति जो वो भी आत्मभावना है,
वो भी आत्मभावना है, सत्पुरुष के प्रति के बहुमान वो भी आत्मभावना है,
आत्मभावना की भूमिका में अपने सत्पुरुष देव में वृत्ति का रह जाना, उस भूमिका के निर्विकल्प होना,
उसको भूमिका के निर्विकल्प तक लिया है।
भावना के साथ पुरुषार्थ रहता है,
फीलिंग स्टेज में आ गया ना, फीलिंग स्टेज में आने से पुरुषार्थ चालू होगा, और जो विकल्प में होगा वो तो थक जाएगा विकल्प करते करते, और थक जाएगा बाद उसको समस्या आएगी, अरे मैं बहुत टाइम से स्वरूप का रतन चिंतन करता हूँ, मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं चलता है, मुझे प्राप्ति क्यों नहीं होती है।
और वैसे कोई स्वच्छंद चढ़ जाए तो किसी को ये विकल्प ही नहीं आता
तो फिर तो भावना का प्रश्न भी नहीं रहता है, जो विकल्प भी मिल गया तो भावना है कि विकल्प है, वो प्रश्न भी नहीं रहा, सत्ता का प्रश्न तो एजेंडा पर वो है कि वो विकल्प है या भावना है, क्योंकि विश्व है नहीं, इसकी क्या चर्चा है।
कितने बार होता है कि विकल्प में इतना चढ़ जाता है, इतना स्वच्छंद हो जाता है कि वो डिफरेंस छांटने का ये समझने का स्थिति में भी जी नहीं
रहता। स्वच्छंद में तो अंधत्व होता ही नहीं, स्वच्छंद में तो अंधत्व होता ही नहीं।
आशी तो जानना बाकी भावना जो है ना वो उसमें पुरुषार्थ के उत्पादक वाला तो बात चल रही है, और साथ में वो वर्तमान में प्रयोजन की पकड़ को जो पैदा करती, वर्तमान प्रयोजन की पकड़ को पैदा करती।
तो सब जो इनके आनुषंगिक परिणाम है, सिर्फ कोई जीव मुमुक्ष की यथार्थ भूमिका में आता है तो उनके जो भी आनुषंगिक परिणाम है, दूसरे दूसरे मेल वाले परिणाम है, वो स्वयं में पैदा होने सकते हैं। जैसे प्रयोजन की पकड़ है तो स्वयं आ जाएगी,
भावना होगी तो प्रयोजन की पकड़
आती है,
जिसको भावना होगी
वही
प्रयोजन की
पकड़, भावना की पकड़ में आ जाएगा। क्या तो उसको स्वरूप प्राप्त करनी है, उसकी खोज चलती है इस विषय में, तो प्रयोजन की पकड़ में वो आएगा, बराबर आएगा, वैराग शून्य भी आएगा। ये सब आनुषंगिक परिणाम है, वैराग शून्य भक्ति सत्पुरुष के चरण सानिध्य, ये सब बात उसको आएगी। वो आत्मभावना में आया है इसलिए सत्पुरुष वाली बात रह जाएगी, वो भी नहीं है,
मुख्य है बाकी सब तो
हाँ वो बात भी आएगी, क्योंकि उसको खोज है तो पता चलता है, उनको सहज सूझ जाती है कि इसका तज्ञ कौन है, इस विषय के जानकार कौन है, मुझे इनसे पहचाना चाहिए, उनसे समझना चाहिए, मैं तो अनजाना हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ये बात आई बिना रह के
तो मूल्यांकन में से वही भावना होती है, भावना हमेशा मूल्यांकन में से होती है, इसलिए उसमें भूल होने कोई प्रश्न,
जरूरत में से हुई, जरूरत में से हुई तो रुचि हुई, रुचि के साथ ये भावना चलती है, बात है। तो क्या कहते हैं कि मुमुक्षु जीव शुरू में लगता है परंतु अपनी शोधक वृत्ति चली न जा, भले ही कोई भी शुभ प्रसंग आ गया उसके उदय में पंचकल्याण का हो या स्वाध्याय हो या यात्रा का प्रसंग हो या दान देने की बात हो या पूजा करने की बात हो मंदिर जी में, कोई भी शुभ प्रसंग में उसका उपयोग लगेगा, लेकिन अंदर में खोज चलती है, मेरा स्वरूप कैसा है, मूल में मैं कैसा हूँ, और वो बात कहाँ आती है, कैसे आती है, उस पर उसकी खोज साधन है।
खाना तो आत्मा के लिए, पीना तो आत्मा के लिए, बैठना तो आत्मा के लिए,
वो बात चलती। और जैसे कोई भीड़ वाली जगह है, बाजार हो या प्लेटफॉर्म हो, रेलवे का बहुत लोग हो, भीड़ वाले, इसमें किसी एक व्यक्ति को खोजते हैं तो क्या नजर कहाँ रहती है, भीड़ में तो बहुत से लोग दिखते हैं, लेकिन मुझे जिसको मिलना है वो कहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, वो कहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, एक खोज वाली ज्ञान में कोई खास उद्देश्य रहता है, खोज का कोई उद्देश्य रहता है, इस प्रकार ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। तो यहां भी ये शुभ कार्य का उदय आया, एक पीछे एक पीछे एक पीछे, ये भीड़ है और उसमें खोज चालू है, तो मेरा स्वरूप कैसा, मेरा स्वरूप कैसा, ये बात कैसे मिलती है, आपको शास्त्र में कैसे मिलती है, मंदिर जी में कैसे मिलती है, कोई भी व्यवहार के प्रसंग है, हमारे जैनियों के व्यवहार में परमार्थिक हेतु सब जगह है, परमार्थ हेतुभूत व्यवहार है सब। शास्त्र स्वाध्याय भी परमार्थ हेतुभूत है, जिनेन्द्र दर्शन भी परमार्थ हेतुभूत है, तो वो बात चालू रहती है।
सबको भीड़ कहा, सबको भीड़ कह दिया,
सबको
सुख के प्रसंग को भीड़ कह दिया।
हाँ वो भीड़ है, मतलब भीड़ गौण की जाती है, ऐसे सुख प्रसंग गौण हो जाता है, खुद मुख्य रूप से चालू रहती है। इस प्रकार जुड़ता है, शुभ में दूसरे लोग जुड़ते हैं, उस प्रकार मुमुक्ष नहीं जुड़ेगा। मुमुक्ष का शुभ में जुड़ने का प्रकार अलग है, ये कहना चाहते हैं।
फिजिकली वहां है, स्पिरिचुअली वहां नहीं है। फिजिकली वहां है, स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअली नहीं है, बस ठीक बात है। फिजिकली वहां है भीड़ के बीच में, स्पिरिचुअली जो उसको चाहिए वहां उसकी आत्मा है।
मतलब शादी जैसे प्रसंग में समझो जाने का होते तो वहां भी अनित्यता असारता उसको दिखाई देने लग जाती है। ऐसे कोई शुभ प्रसंग में जाता भी है तो वहां भी उसको अनित्यता असारता सब दिखाई देने लग जाते हैं अपनी भावना की वजह से।
और अपने स्वरूप के खोज में रहेगा, उसी प्रकार उसका रहेगा। कोई भी शुभ के प्रसंग हो उसका प्रकार अलग है। शुद्धता का ध्येय छोड़कर शुभ का आग्रह नहीं रखता। और दूसरा सिंपन है, वो शुभ क्रिया करता है फिर भी उसका आग्रह नहीं होता उसको, क्योंकि उसका ध्येय शुद्धता का है, शुभ का नहीं है। और जिसका ध्येय आत्मशुद्धि का नहीं है उसको शुभ करते करते शुभ का आग्रह हुए बिना रहेगा,
परंपरा निभाएगा।
हाँ वो परंपरा निभाएगा और उसको दूसरा नहीं करेगा तो उनको लगेगा मैं करता हूँ, उनको भी करना चाहिए, क्यों वो लोग नहीं करते हैं। हम करेगा सब दूसरों को करना चाहिए। हम भक्ति करते हैं तो दूसरे भक्ति में क्यों नहीं रहते हैं, अत्यंत नहीं बात। हम फलाना करते हैं तो दूसरा क्यों नहीं करते हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते तो दूसरे क्यों करते हैं, उसका आग्रह दूसरों के लिए आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। ये आत्मशुद्धि का ध्येय वाले को नहीं होता। जिसका शुद्धि का ध्येय है उसको अपना शुभ भी गौण है और दूसरे का शुभ भी गौण हो जाता है। शुद्धता का ध्येय छोड़कर शुभ का आग्रह नहीं रखता तथा वह मैं शुद्ध हूं करके ऐसा विकल्प करके कल्पना करके पर्याय की अशुद्धता को भूल जाए, स्वच्छंद हो जाए ऐसा नहीं करता। उनको भान रहता है कि पर्याय में मेरी कितनी अशुद्धि है, तो पर्याय की अशुद्धि को भूलता नहीं है। जबकि जो खोजक वृत्ति वाला नहीं है उनको तो विकल्प हो जाता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं। वो वर्तमान अशुद्धि को भूल करके ऐसा होता है, वो यथार्थ नहीं है।
मैं शुद्ध हूं करते करते वो नींद ले लेगा। मैं शुद्ध हूं करते करते उसको नींद आ जाएगी, अगर सुबह में आ जाए।
नींद आए या नहीं आए वो कोई महत्व की बात नहीं है, तो आए वो कोई जरूरी भी नहीं है।
सब में आ जाएगा,
थक जाए वो बात जरूर है कि थकान लगेगा, कृत्रिमता में थकान अवश्य आती है, तो थकान के कारण से नींद आ जाए अलग बात है, नींद नहीं आ जाए वो अलग बात है, लेकिन थकान तो आएगी। सहज हो, स्वाभाविक हो, उसमें थकान नहीं हो, कृत्रिमता में तो थकान हो ही जाती है, आ ही जाती है।
सर मान भी आ जाए, अहम आ जाए, मैं शुद्ध हूँ जिसको विकल्प चलता रहेगा वैसा मान लेगा, उसको मान आ जाए।
उसको मान
मान मान
हाँ मान पाएगा
उसको मान माता
उसको मान आ जाए तो मैं तो ऐसा आत्मा का चिंतन करने वाला
तो दूसरों को हीन दृष्टि से देखने लगेगा
मान में कौन नहीं होता अपना ऊंचापन दूसरे का नीचापन ये तो मान का लक्षण है तथा वह मैं शुद्ध हूँ करके पर्याय की अशुद्धता को भूल जाए और स्वच्छंद हो जाए ऐसा नहीं करता जो मोक्ष जीव है यथार्थ मोक्ष है उसको ऐसा नहीं होता मैं शुद्ध हूँ मैं शुद्ध में भावना होती है फिर भी अशुद्धता को भूले बिना होती है एक और भी बात लेते दृष्टांत जैसे प्रत्यक्ष अपने सदगुरु नहीं हो वर्तमान में और उसको प्रत्यक्ष वत उसके उपदेश को उसके वचनाम उसको पढ़ते हैं जैसे हमारे सामने बैठ करके हमको उपदेश दे रहे हैं या हम उसको हमारे हृदय में प्रत्यक्ष करके उसके उपदेश को अंगीकार करने का प्रयास करते हैं वो सही है उसमें कभी इसका वियोग का दुख बुरा नहीं जाता है प्रत्यक्ष वत गिन करके भी उसका वियोग सालेगा
दो प्रकार बनता है प्रत्यक्ष पार करके एक वियोग का दुख नहीं चलता है और एक प्रत्यक्ष पार करके वियोग का दुख चालू रहता है दो प्रकार बनता है तो उसमें दो प्रकार बनता है एक प्रत्यक्ष पार करके वियोग का दुख नहीं चलता है वियोग का जो दुख होना चाहिए वो नहीं लगता है और एक प्रत्यक्ष पार करके भी वियोग का दुख चलता है
तो पहले वाला तो
वो यथार्थ वो नुकसान का कारण है दूसरा वाला जो है
वो यथार्थ
वो यथार्थ
वो तो वही बात कर रहे हैं कह रहे हैं
वही बात
कि जो प्रत्यक्ष फिर भी परोक्ष है और प्रत्यक्ष मान लेते हैं और उसको जिसको वियोग का दुख नहीं लगता है तो उसने तो गड़बड़ कर दिया वो वास्तविकता से दूर चला गया कल्पना में आ गया और उसको दुख लगना चाहिए वो बात उनके लिए अनुचित है नहीं लगता है वो अनुचित है
उसको दुख
वैसे यहाँ स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं हुआ वो तो दृष्टांत में लेते हैं वैसे यहाँ स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं हुआ फिर भी भावना बातें हैं प्रत्यक्ष वत करके तो भी प्रत्यक्ष नहीं होता है वहां तक उसका खेद जाता भावना में तो प्रत्यक्ष मत लेंगे कि मैं शायद स्वरूप प्रत्यक्ष हूं लेकिन प्रत्यक्ष हुआ नहीं तो वो जो वास्तविकता रह गई तो प्रकट नहीं हुआ तो उसका खेद हुए बिना रहेगा
विधि तो ऐसे
तो
ही
दो बात साथ में आई कि वर्तमान में अशुद्ध हूं यहां से लेते हैं कि मैं पर्याय की अशुद्धता को मैं भूलू नहीं भूलता और मैं शुद्ध हूं ऐसे भावना भी भाता हूं दोनों का डिफरेंस एक साथ नजर आता है और वही पुरुषार्थ को जगाता है अरे वर्तमान में मेरी अशुद्धि है स्वरूप से मैं शुद्ध हूं ये अशुद्धि मुझे मिटानी चाहिए और स्वरूप को अवलंबन करके प्रत्यक्ष करके मिटेगी इसके सिवा मिटेगी इसलिए इसका खोज करके अनुभव करना चाहिए तो कितनी गंभीरता है रचनामृत में कह रहे बहुत है खोज से बात चालू किया है पॉइंट क्या पकड़ा खोज से बात चालू किया है ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण आया है सीधा वो बात नहीं लिया मैं शुद्ध हूं मैं शुद्ध हूं मैं ऐसा सीधा बात नहीं लिया पहले खोज वाला लिया है कि जो स्वरूप की खोज में है उनको ये भूल नहीं होगी वो पर्याय की अशुद्धि से वो शुद्धि को भूलेगा अशुद्धि को नहीं भूलेगा तो स्वच्छंद नहीं होगा। जो पर्याय की अशुद्धि को भूल जाता है और मैं नायक हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, परमात्मा हूं, इसमें लग जाए, इस विकल्प में लग जाता है, कल्पना में चल जाता है, तो उसको स्वच्छंद हो जाता है, वो स्वच्छंद में आ जाता है। पर्याय की अशुद्धि का भान वाला कभी स्वच्छंद में आएगा? और शुष्क ज्ञान नहीं हो जाता, तो वो भी सिम्टम दिया है, जो विकल्प में केवल चढ़ता है, कल्पना में चढ़ता है, उसको शुष्कता आए बिना रहेगी नहीं। और जो यथार्थ मुमुक्षु है उसका हृदय को भिगा हुआ रहेगा, हृदय को भिगा हुआ रहता है। किससे? भावना से। भावना से हृदय भिगा हुआ है और भावना रहित विकल्प होता है तो ये शुष्क ज्ञानी होता है, स्वच्छंदी होता है। और उसका जो दोनों का बात करने में टोन ही अलग हो जाता है। भावना वाला जिस भावना से बात करेगा और विकल्प में चढ़ने वाला कोरी कल्पना से बात करेगा, दोनों के टोन में फर्क हो जाएगा। नहीं आती है, साथ साथ फीलिंग हो जाती है, आंसू भी आ जाता है। ऐसे थे, भले उसकी प्रशंसा करे, बहुत उदार थे, वैसे थे, सुदृढ़ थे, सरल थे, वो थे, मध्यस्थ थे, कहते कहते उनको उसके प्रति भाव आ जाएगा, आंसू भी आ जाएगा। तो अपन तो ऐसे क्लियर कट क्या करते हैं कि एक वैचारिक स्तर पर चला गया, स्तर पर चला गया, एक फीलिंग स्तर पर चला गया। विकल्प तो विकल्प है, लेकिन दोनों के विकल्प में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये बात जो वैचारिक के विज्ञान रूप में है वो फीलिंग स्तर की बात चली है, और वैचारिक स्तर से जो शुष्कता आती है, पसंद हो जाता है, उसका निषेध कर दिया। इस प्रकार से नहीं लेना, मैं शुद्ध हूँ, नायक हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा लेना है। लेकिन कोई प्रकार है इसका लेने का खास, तो खास प्रकार से लिया जाता है मुमुक्षुता में। ऐसा नहीं चलता है कि बस रटन किए जाए, बोले जाए, ऐसा बात नहीं चलता। शोधक वृत्ति चालू रही तो इस विषय की यथार्थता है मूल में, मूल में यथार्थता यहाँ से चालू होती है। उसकी खोज है तो खोज किसकी होती है? कि जिसका वियोग होता है उसकी खोज होती है। फिर मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, वो बात कैसे रही कि खुद के साथ रही?
यथार्थ है वो,
तो वो बराबर है। उसको तो जिज्ञासा चली जाती है। जो विकल्प में चढ़ता है, कल्पना में आ जाता है, उसको तो जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है स्वरूप की। तो मैं कैसा हूँ वो बात उसको नहीं रहेगी, वो तो मान लिया उसने, तो मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो नायक तत्व हूँ, ऐसा मान लिया। वो प्रकार सही प्रकार नहीं है, उससे शांति नहीं मिलेगी। ये तो आत्मशांति पर ले जाने का मार्ग है। उपाय तो यथार्थ होना चाहिए।
आपने कहा कि अप्राप्ति का खेद होता है, ये खेद कैसा, मतलब इसकी तीव्रता कैसी होती है?
तीव्रता होती तो वेदना में आ, अप्राप्ति का खेद की अगर डिग्री बढ़ जाती है, तीव्रता आ जाती है, वो भी वेदना में आ जाता है। जैसे प्रियजन का वियोग में आंसू बहता है कि नहीं बहता है, ऐसे यहाँ भी आंसू बहने लगता है। कि अरे मेरे मेरा परमात्मा मेरे में है, वो ही सूजत नीक है, विशुष्टता नहीं है, मेरे धनी नहीं दूर दिशांतर, मेरे में है ये सूजत नीक है। जना सदा मेरे धनी तो मेरे में है, मेरे पास है, और मुझे उसका दर्शन होता नहीं है, ये क्या बात है? तो वो बात उससे बर्दाश्त नहीं होगी, वेदना में आ जाएगा, ये यथार्थ वेदना है, वेदना में आ जाएगी अंदर से, तो उसको प्राप्ति हुए बिना रहेगी
नहीं,
वेदना उसको ले जाएगी माता जी, ऐसा होगा।
दर्शन परीक्षा,
कोई दर्शन परीक्षा, दर्शन नहीं हुआ,
नहीं हुआ
इसका परीक्षा है, दर्शन
परीक्षा
क्या?
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
हिंदी में 16 पेज महर्षि के वचनामृत ग्रंथ में मुमुक्ष की भूमिका का विषय बहुत आया है और बहुत बढ़िया है। गुरुदेव ने इसलिए इसकी प्रशंसा की कि मुमुक्ष के लिए ऐसा ग्रंथ हमारे यहाँ ज्यादा उपलब्ध नहीं है। दुनिया में वो बात है यथार्थ रुचि सही शुभ भाव वैराग्य उत्सम रस से सराबोर होते हैं। बात क्या है, आनुषंगिक परिणाम स्वतः हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते, हो ही जाते हैं, आने लगते हैं, अंदर से आने लगते हैं। तो जिसको यथार्थ रुचि हुई, स्वरूप प्राप्ति की भावना हुई, रुचि हुई, जिज्ञासा हुई, उसके शुभ भाव तो उसको होंगे, क्योंकि वो तो अशुभ में कम जाएगा, शुभ में ही ज्यादा आएगा। वो वैराग्यों उत्सम रस से शराब होते हैं, तो उनके शुभ भाव और उसके अशुभ भाव दोनों भाव तो दोनों होंगे, लेकिन उसमें वैराग्य तो होगा होगा और होगा ही, और शांतता भी होगी, कषाय रस भी मंद होगा। और यथार्थ रुचि बिना वह के वही शुभ भाव रुखे एवं चंचलता युक्त होते हैं। उसके लक्षण लिया, रुखे होंगे, शुष्क होंगे और उसमें चंचलता भी होगी, स्वभाव में भी स्पीड तेजी से चलेगा, शांतता नहीं है ना, अशांति है, तो अशांति में परिणाम की स्पीड बढ़ जाती है, एकदम तेजी से परिणाम चलने लगते, ये शांत धीरे परिणाम चलते, चंचलता बढ़ जाती है। हमारे आ जगत माथे हवे कई जोतो तमे जोतो हो तो कई बलवानो पण नथी, પછી એવું નથી કે જોતું હોય તો કઈક આત્મામાં આવી જાય છે, મળી જાય છે, એવું કઈ છે નહીં, બધાને જોઈએ છીએ પણ કોઈને કઈ મળતું નથી, પણ સમજ નથી એટલે જોઈએ છે, જોઈએ છે, જોઈએ છે, ચાલુ રહીએ છે, અને જેને સમજ નથી, સમજ આવે છે કે પછી આમાં કઈ મળતું નથી, કઈ લેવા જેવું છે પણ નહીં, એટલે એ તો એનું ડાપણ છે કે હવે મારે કઈ જોઈતો નથી. વિવેક આવ્યો, વિવેક આવ્યો હિન્દી ને 6 નંબર કા પેજ હે मैं हूं इस प्रकार स्वयं से अपने अस्तित्व का जोर आता है, स्वयं अपने को पहचानता है. ये क्या है कि पुरुषार्थ का विषय और यथार्थता कैसे होती है इस विषय में, कि मैं हूं अपना अस्तित्व, मैं हूं इस प्रकार स्वयं से अपने अस्तित्व का जोर आता है, स्वयं अपने को पहचानता है. पहचान जो होती है वो बिना परिचय नहीं होती है. परिचय कैसे होता है कि अवलोकन से होता है. ये भावों का परिचय की बात है. तो भावों का जो अवलोकन है यानी अपना भावों पर उपयोग जाकर के क्या अनुभव होता है अपने भावों का, उस प्रकार से उसका अवलोकन होता है. उस अवलोकन से पहचान होता है. तो मैं हूं ऐसा मैं हूं पना तो राग में और शरीर में तो हो ही रहा है. मैं हूं 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 ये तो चालू है, लेकिन अस्थान में है, स्वस्थान में नहीं है. तो स्वरूप में या ज्ञान में नहीं है, राग में और देह में तो है ही. मैं राग रूप हूं और मैं देहादी स्वरूप हूं, ये तो हमारा जैसे चालू है. तो जिसको पहचान होता है वो ज्ञान लक्षण से होता है. और ज्ञान और राग दोनों भिन्न भिन्न है, विरुद्ध जाति के हैं, तो अवलोकन से मालूम पड़ता है. जब अवलोकन से मालूम पड़ता है तो मैं हूं इस प्रकार स्वयं से अपने अस्तित्व का जोर आता है. हूँ छो एम पोता थी पोता ने अस्तित्व नो जोर आवे, पोते पोता ने ओळखे, स्वयं को पहचाने. पहचान से पुरुषार्थ और तीव्र हो जाता है. पहचान होने से पुरुषार्थ और तीव्र हो जाता है, क्योंकि पहचान में अनंत सामर्थ्य का पहचान हुआ. क्या पहचान हुआ? अपने अनंत सामर्थ्य का पहचान हो गया. तो उसमें बल आए बिना नहीं. जैसे दरिद्री को घर में गाड़ी हुई संपत्ति का भान हो जाए तो उसको मैं पैसे वाला हूं मैं लक्ष्मीपति हूं इसका जो रहे बिना रहेगा नहीं, संपत्ति का बल आएगा उसको। पहले जो दीनता थी वो दीनता निर्बलता चली जाएगी, सहज होता है ऐसे पहचानने से। अपना जो गुण निधि है वो निधि का पता चल गया तो उसका बल आए बिना रहेगा नहीं, उसको स्वरूप निश्चय कहते हैं। और निश्चय में निश्चय का बल आए बिना रहता सिद्धांत है। जब किसी एक बात का निश्चय होता है तो उसका बल आता है। तो ये तो स्वरूप की पहचान से स्वरूप का निश्चय हुआ कि मेरा स्वरूप ऐसा ही है तो उसका बल आए बिना रहेगा, उसका बल आ जाएगा।
स्वभाव की परख
आ जाती है। हाँ, परख आती है, पहचान परख आती है।
चौदह गुण स्थान से पार मेरा स्वरूप है।
चौदह गुण स्थान मेरा स्वरूप उसमें तेरहवा आर्यन का भी आ गया, स्वयोगी केवली का आया और चौदहवा अयोगी केवली का भी आ गया। वस्तु का स्वरूप तो पर्याय से पार है, और ये जो दोनों पर्याय है नीति पहले ऊपर ऊपर से अस्तित्व का जोर आता है, फिर अस्तित्व का गहराई से जोर आता है। वह विकल्प रूप होता है परंतु भावना जोरदार होने से सहज रूप से जोर आता है। तो भावना और विकल्प साथ से लिया कि नहीं लिया, क्योंकि सविकल्प दशा में ये होता है। क्या कहा, पहले ऊपर ऊपर से अस्तित्व का जोर आता है, स्वरूप को पहचाने और पहचान करके पहले ऊपर ऊपर से मैंने शुरुआत में जोर थोड़ा कम होता है, फिर गहराई से मैंने जोर से जोर आता है। गहराई से जितने गहरा जाता है जोर बढ़ जाता है। गहराई में क्या है, प्रत्यक्षता मालूम पड़ती है। पहचानने में स्वरूप सहज प्रत्यक्ष होने से और अनंत प्रत्यक्ष होने से उस प्रत्यक्षता एकदम पुरुषार्थ को अंदर से उछाल करके बाहर ले आता है, पुरुषार्थ को उछाल करके बाहर लाता है।
कोई पर भूमिका वाले लागू पड़े
उसमें यहाँ पहचान वाले की बात लिया है, पेंशन जो लिया है ना वो पहचान वाले की भावना, पहचान वाले को जो भावना जिस स्तर की होती उसका बात लिया है। व्यक्त मैंने व्यक्त रुचि वाले की बात है, अव्यक्त रुचि वाले की बात, व्यक्त रुचि वाले की बहुत तीव्र भावना होती है। विश्वासपूर्वक दृढ़ता हो तो बोल बता रहा है वो खांसा है कि विश्वास आ रहा है, दृढ़ता पण आ रहा है, यथार्थता पण आ रहा है, बोल बता रहे हैं। बीच में वो बात नहीं है कि ओके पुता में ओठ है, ये बात दे दीजिए सब पहचान वाली बात भावभाषण में जाती है। तो भावभाषण होती शुरुआत में जो जोर आता है अस्तित्व का, मैं ऐसा हूं, ये जो जोर आता है एक बात में बहुत गहराई से आता है, जोर से आता है, तीव्रता से आता है। और विकल्प होता है उस वक्त, विकल्प साथ होता है, विकल्प के साथ होता है ऐसा जोर, मैं हूं। परंतु भावना जोरदार हो, भावना स्वरूप जो देखा भावभाषण में आया तो उसकी व्यक्त रुचि हुई वो भावना में, ऐसा स्वरूप मुझे मिला है, उसकी जो भावना आई वो भावना और इसलिए सहज रूप से जोर आवे यानी तीव्रता से जोर आए, कृत्रिमता से नहीं आए। भले विकल्प हो तो भी सहज है, विकल्प हो तो भी सहज है। इसमें क्या है कि स्वरूप तो अद्भुत आश्चर्यकारी है। कैसा है?
अद्भुत आश्चर्यकारी,
अद्भुत आश्चर्यकारी स्वरूप है। जो भाववासन में आया है वो अखंड सिद्ध पद है, त्रिकाली अखंड सिद्ध में हूं, सिद्ध पद स्वरूप में हूं और प्रत्यक्ष में ऐसा हूं, तो इसका जोर सहज रूप से आएगा, क्योंकि इसकी परिणाम को ऐसे अद्भुत आश्चर्यकारी स्वरूप की आसक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा?
आसक्ति हो जाएगी,
आसक्ति हो जाएगी। वो आसक्ति सब जगह से उसको विरक्ति में ले जाएगी, और जो भी पदार्थ दूसरे पदार्थ की पर पदार्थ की आसक्ति है उसको छुड़ा देगी। स्वरूप की आसक्ति पर की आसक्ति को छुड़ा देगी, तो परस्पर में आसक्त नहीं होगा। हाँ, तो ऐसा उपयोग होगा तो लब्ध भी बदल जाएगा, क्योंकि उपयोग के लिए उपलब्ध होता है उसका लब्ध भी बदलेगा।
पहला ऊपर ऊपर किया है, उपलब्ध उपलब्ध आ गई, पर भाव भाषण बची।
हाँ, शुरुआत से नहीं, इसलिए तारतम्य भेद हो रहे, भाव भाषण था तरह शुरुआत हो अने आगे परिणाम चाले, अपना पुरुषार्थ में उम्र ताकत की जाए। क्या होता है? भाव भाषण होने के बाद परिणाम अनुभूति की ओर चलने लगता है, और अनुभूति की ओर परिणाम चलता है तो उसमें पुरुषार्थ की डिग्री का ही फर्क है। पुरुषार्थ तो स्वसम्मुखता का हो गया, और वो तीव्र होते होते अनुभूति तक पहुंचता है। तो जब अनुभूति तक पहुंचता है तो ज्ञानी कहते हैं कि पुरुषार्थ का कोई अपूर्व पराक्रम होता है। तो सूक्ष्मता से उसमें बहुत सी बातें हैं कि जब अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति होती है, वो अनुभूति का पुरुषार्थ, और उसके पहले भाव वासन में विकल्प सहित स्वसम्मुखता में चलने वाला पुरुषार्थ, उसकी डिग्री में ब्रह्मास्त्र होता है। इसलिए उस वक्त का पुरुषार्थ को कहते हैं कि अपूर्व पराक्रम कर लिया उसने, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उसमें अंतर ज्यादा है। ऐसा तो उससे सूक्ष्म परिणामों का विषय है, लेकिन होता है
भावभाषण पहला आ प्रकार विकल्प ने भावना कही सके कि नहीं आने लक्ष्य
रखना भावना है। भावना तो कोई भी स्तर पर है, स्वरूप मैं हूं वो अस्तित्व सूचक भावना है। वो खास करके ज्ञान प्रधानता से ज्यादा चलता है, क्योंकि लक्षण ज्ञान है तो खोजक जो वृत्ति है उसमें ज्ञान की प्रधानता ज्यादा है, और श्रद्धा जो है वो सिर्फ अस्तित्व को ग्रहण करती है। तो जहां दर्शन में बंद होता है और श्रद्धा की प्रधानता वाला रुचि का परिणाम नहीं है, वहां अस्तित्व की प्रधानता चलती है।
भावना
तो करी सके, हाँ करी सके, बहुत स्पष्ट छे નથી હોતો, વિજ્ઞાનના પ્રયોગમાં થોડુંક સ્પષ્ટ થતું જાય છે, ભાવ ભાષણ શરૂઆત થતી જાય છે, જેમ જેમ સમજણ દ્વારા ભાવ ભાષણ આવતું જાય છે તેમ તેમ દર્શન શિથિલ થતો જાય છે। પરમાગમ સારમાં 236મું વચના પદ છે, પરમાગમ સાર જેમ જેમ સમજણ દ્વારા ભાવ ભાષણ આવતું જાય છે તેમ દર્શન શિથિલ થતો જાય છે। તો એમાં એક પ્રકાર હોય છે, कि दर्शन हो जाए सिद्धि को पड़ जाए तो दर्शन वो सिद्धि को श्रद्धा को विषय अस्तित्व
અને
જ્ઞાનના વિષયમાં જ્ઞાન લક્ષણથી ભિન્નતા કરવી એ પ્રોસેસ છે એટલે ભેદ જ્ઞાનનો પ્રયોગ છે.
હું ગાયક છું ભાઈ એ ભાવના, હું ગાયક છું એ ભાવના જેવી છે જ્ઞાન પ્રધાન છે, અને હું છું એમ જે અસ્તિત્વથી જોડાવે શ્રદ્ધાનું કારણ છે.
હા, એ શ્રદ્ધા પ્રધાન છે. મોક્ષની ભૂમિકામાં શ્રદ્ધા પ્રધાનતા એમાં શું છે કે જ્ઞાનમય છું એમાં અસ્તિત્વ આવી જાય છે, એકલા અસ્તિત્વમાં જ્ઞાન નથી આવતું.
સરસ.
એમાં આપણે ત્યાં મુમુક્ષુમાં જે વિચારો છે એમાં ક્યારેક વિચારભેદ પણ થાય છે. વિચારભેદની અંદર એવી રીતે વિચારભેદ ચાલે છે, આવી રીતે ચાલે છે. અસ્તિત્વ ઉપર જોર લગાવો, જ્ઞાન ઉપર જોર નહીં લગાવો, અસ્તિત્વ ઉપર જોર લગાવો. શું કેમ કે શ્રદ્ધા તો અસ્તિત્વને પકડે છે, માટે આપણે પહેલા સમય દર્શન કરવું છે ને, માટે અસ્તિત્વ ઉપર જોયું. આવીજીની ભૂલ થઈ. એટલે એકવાર પૂછી બેનશ્રી ને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, ઇન્ટેન્શનલી ઇરાદાપૂર્વક પૂછ્યો હતો, વિષયને સ્પષ્ટ કરવા માટે કે મુમુક્ષુ કો મેં જ્ઞાનમય હું એસા લેના, અમે મેં હું મેં હું મેં હું એસા લેના, અસ્તિત્વ કી પ્રધાનતા સે લેના યા એસા લેના, તો કે નહીં જ્ઞાન કી પ્રધાનતા સે લેના. ફિર હમને વો સ્પષ્ટ કરાયા, મારે વિચાર મેં તો વાત સ્પષ્ટ થઈ, લેકિન વો સ્પષ્ટ કરાયા કે જ્ઞાન મેં હું ઉસમે તો હું પણ આઈ જતા હૈ, લેકિન મેં હું પણ આને જ્ઞાન પણ નહીં આતા હૈ. इसलिए ऐसा है तो कहा इसलिए ऐसा है, वो स्पष्ट कर दिया उसने. सूक्ष्मता से भी विधि की भूल रह जाती है. न्याय भी कहते हैं कि भावना जोरदार होने से सहज रूप से जोर आता है, भावना में तीव्रता होती है तो बल भी तीव्र होता है, सातवीं सहज तीव्र होता है. भावना की उग्रता हो तो सच्चा आने का अवकाश है. सच्चा मैंने यथार्थ, भावना की उग्रता होने से विकल्प की उग्रता नहीं लिया, भावना की उग्रता होने से यथार्थ परिणमन आने का अवकाश है. इसका मतलब यथार्थ परिणमन होगा तो दूसरे भी आनुषंगिक परिणाम बराबर यथार्थ रूप से पैदा हो ही जाएंगे, और इसका अवकाश है वहां भावना की उग्रता में. तो जिसको भावना की उग्रता होगी उसके और परिणाम भी यथार्थ चलेंगे. इसलिए भावना का जो विषय है वो शुरू से ही हर भूमिका में यथार्थ रूप से हो, मोक्ष के लिए योग्य है.
ભગવાન